Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers, and the numbers are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your hostess, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है. हम लेकर आए हैं आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी. श्रोताओं, आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं. हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे. इसके लिए आप हमें 2331-4444 दूसरा नंबर, 2342-1050 और तीसरा नंबर 2331-0464 पर कॉल कर सकते हैं. और दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना न भूलें. श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं आर्थिक विश्लेषक राजीव रंजन जी. राजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
जी नमस्कार.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ है लालिमा.
Thank you, Nikhil. Yes, let's begin with the headlines. Domestic benchmark indices end with gains of over 0.5%. Sensex reclaims 80,000 level. Nifty ends above 24,250. FDI witnesses growth of 25% in April to September this year. India among fastest growing major aviation markets in the world, third largest domestic aviation market globally, says Minister of State for Civil Aviation Muralidhar Mohol. And crude oil prices surge over 1%. Brent crude trades at $72.67 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार आज आधा प्रतिशत बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स ने 80,000 अंक का स्तर पार किया. निफ्टी 24,250 अंक से ऊपर पहुंचा. मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 45% की बढ़ोतरी. नागर विमानन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, भारत वैश्विक उड्डयन क्षेत्र में तेजी से बढ़ता देश, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाजार. और क्रूड ऑयल में 1% से अधिक का उछाल. ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72.67 प्रति बैरल पर. और अब खबरों पर नजर डालते हैं तो घरेलू शेयर बाजार आज आधा प्रतिशत बढ़त के साथ बंद हुए. 30 शेयरों वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 445 अंक यानी 0.56% की तेजी दर्ज करता हुआ 80,248 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ. दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 145 अंक ऊपर आकर यानी कि 0.6% की वृद्धि के साथ 24,276 अंक पर पहुंच गया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विस्तृत बाजार भी आज हरे निशान के साथ बंद हुआ. मिड कैप सूचकांक में 1% से ज्यादा का उछाल आया और स्मॉल कैप सूचकांक करीब 0.8% ऊपर चढ़ गया. सेंसेक्स सूचकांक में 30 में से 21 कंपनियों में बढ़ोतरी देखी गई. बीएससी के सेक्टोरल सूचकांकों में 20 में से 17 सेक्टर लाभ के साथ बंद हुए. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 114 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 18 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर को छुआ.
All right, before we go on any further, we are now joined by Yogesh Sharma, calling us from where we are broadcasting. That's right, Delhi. Ji Yogesh, ji, apna sawal puche hamare expert Rajiv ji se.
Ji, aap sabhi ko namaskar.
Namaskar.
Mera sawal ye hai ki abhi haal hi mein humne news sun liya hai ki windfall tax ko scrap kar diya gaya hai. Ye windfall tax kya hai aur ye iska kis sector pe kaisa prabhav padega share market mein? दूसरा एक छोटा सा सवाल ये है कि फ्राइडे को जो आंकड़े आए थे जीडीपी के वो कम आए थे तो उसकी अपेक्षा ये थी कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा लेकिन आज उल्टा हो गया तो ये किस कारण से हुआ?
दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं राजीव जी.
जी योगेश जी का जो पहला सवाल है विंडफॉल टैक्स के बारे में उसके अगर हम डीपर डिटेल्स में जाएंगे तो थोड़ा इस प्रोग्राम का जो एक बाउंडेशन होता है कि हम कंपनी स्पेसिफिक चर्चा नहीं कर सकते, तो थोड़ा उस सीमा को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। विंडफॉल टैक्स के बारे में योगेश जी, मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा बदलाव होता है, या कह लीजिए कि कीमतों में इस तरह का बदलाव होता है जिससे कुछ कंपनियों को बहुत अचानक फायदा हो, खास करके पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में और रेगुलेटेड सेक्टर्स के संदर्भ में आप इस चीज को देख सकते हैं, वहां पर ये चीज जो ताजा खबर आई है वो पेट्रोलियम सेक्टर से संबंधित है। तो वहां पर जब सरकार को ये लगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे आए हैं और उसके चलते कुछ कंपनीज को अचानक से फायदा हो रहा है, तो ज्यादा फायदा हो रहा है जो सामान्य स्थितियों में नहीं होता, तो उस पर सरकार की ओर से एक विंडफॉल टैक्स लगाया गया जिससे वो फायदा कंपनी के पास जितना जाए वो तो ठीक है, साथ में सरकार के पास भी उसका फायदा आए, सरकार को टैक्स भी मिले उस पर। दूसरी चीज आपने जीडीपी के बारे में पूछी, ये बात निश्चित रूप से सही है कि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो तमाम विश्लेषकों के अनुमानों से काफी हल्के हैं। इसके पीछे कई कारण कहे जा सकते हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरी छमाही में चीजें काफी बेहतर रहेंगी, काफी अलग तरीके से दूसरी छमाही बन सकती है, तो शायद बाजार ने इस बात को ये समझा कि ये एक टेम्पररी फेज है, जो एक तिमाही के आंकड़े आए हैं उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए भले ही हमें 5.4 का आंकड़ा जो लगता है वो लगता है कि हाँ काफी चौंकाने वाला और काफी निराश करने वाला है, लेकिन बाजार ने यहां से आगे की देखी है और शायद इसीलिए बाजार का रिएक्शन नकारात्मक नहीं रहा है इस पर।
चेन्नई से अनिल कुमार हमारे अगले श्रोता हैं जो अपना प्रश्न पूछेंगे। अनिल जी, आपका सवाल क्या है?
सर नमस्कार।
नमस्कार, सवाल पूछिए।
सर मैं स्टील के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, हम स्टील से रिलेटेड है
जी,
जो सरिया है वगैरह, इसकी मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन है, ये कब तक रहेगी या कुछ सुधार होने के चांस है?
जी, स्टील सेक्टर के बारे में जानकारी चाहते हैं अनिल जी।
देखिए, अब आप बहुत ही कमोडिटाइज्ड मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं और आप ऐसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं जो शायद इस कार्यक्रम का बहुत उस तरह से हिस्सा नहीं है। यहाँ पर अगर आप शेयर बाजार से संबंधित सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मोटे तौर पर आप को अब आप घरेलू बाजार में अपने पास के बाजार में सरिये की कीमत के बारे में समझना चाहते हैं, मैं आपको चीन की बात क्या समझाऊं, तो चलिए रहने देते हैं।
जी जी जी। All right, we are now joined by Dr. विनोद मेहरा calling us from Delhi again. Yes, जी Dr. मेहरा।
जी हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी को नमस्कार।
नमस्कार जी।
जी जी, मेरा नाम डॉक्टर विनोद मेहरा है, दिल्ली से ही बोल रहा हूँ मैं।
जी जी, सवाल पूछिएगा जी।
सवाल ये है, यहाँ के जो एक्सपर्ट लोग बैठे हैं उनसे कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे भी हैं मेरे पास लेकिन मेरी समझ नहीं है, तो इसमें थोड़ा रिस्क है कि एक बार थोड़ा सा बताएं कि जैसे मेरी एबीसीडी कुछ क्लियर हो, मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, कौन सा बुक पढूं, कौन सी मैगजीन पढूं या कौन सा जो है चैनल वगैरह देखूं जिससे मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग
बेसिक लेवल पर आप समझना चाहते हैं चीजों को।
जी डॉक्टर मेहरा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वही होती है, उसके बाद तो रास्ते निकल ही जाते हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि जोखिम, तो जोखिम हर चीज में है, कोई जरूरी नहीं कि वो आपको शेयर बाजार में ही मिलेगा, आपको सोने चांदी में भी जोखिम मिलता है, आपको रियल स्टेट में भी मिलता है, जोखिम के बिना कोई निवेश नहीं होता है, इवन आप बैंक में पैसा रखते हैं वहां भी जोखिम होता है। पिछली बार जब मैं कार्यक्रम में आया था कुछ लोगों ने मुझसे बैंकिंग के इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पूछा था, वो इंश्योरेंस स्कीम भी क्यों होती है, क्योंकि बैंकों में रखे पैसे पर भी एक रिस्क परसीव किया जाता है, तभी वहां पर आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। सरकार ने जो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस रखा है हर डिपॉजिट होल्डर्स के लिए, तो वो भी क्यों है, क्योंकि वहां पर एक रिस्क है, तो रिस्क फ्री कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब सवाल यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, अगर आप इक्विटीज में या सीधे कहें तो शेयर बाजार में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए जोखिम को अच्छी तरह संभालते हुए आप कैसे निवेश करें यह सोचने की जरूरत है। क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपको शायद बहुत ज्यादा समय इस बात के लिए नहीं मिलेगा कि आप स्टॉक मार्केट का रिसर्च करते रहे, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, आप म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड को चुन लीजिए। इंडेक्स फंड, उसमें आप सेंसेक्स का कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए या निफ्टी का कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए करने के लिए अब आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड भी आ गए हैं। इस तरह से दो तीन तरह के इंडेक्स फंड का आप एक बास्केट बना ले, उसमें निवेश करें, धीरे धीरे आपको चीजें और आगे समझ में आने लगेंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआत करने के लिए इतना काफी होगा।
यानी छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद चीजें
डॉक्टर साहब को छोटे अमाउंट की जरूरत नहीं होगी, शायद ये कि हाँ कहाँ से शुरू करें ये समझना है उन्हें।
और जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी स्वागत है, आपका सवाल पूछे।
हाँ सर, ये पूछना था कि अभी हम लोग को क्या, छोटे इन्वेस्टर को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। और दूसरा कि जो भारतीय रेल है उससे सारा जो भी उससे जो रिलेटेड जितने भी कंपनी है मतलब शेयर्स है जो भी है भारतीय रेल के हिसाब से, तो उसने इन्वेस्टमेंट जारी रखे क्या और ऐड करना चाहिए क्या?
जी देखिए, छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बाजार में जिस बात का बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ हो उस पर ध्यान न दें। सबसे बेहतर है कि आप एक अनुशासित तरीके से निवेश करते रहें और कंपनियों की कमाई किस तरह से बढ़ रही है उस पर ज्यादा ध्यान दें। बाजार में भविष्य को लेकर के जो बहुत सारी कहानियां बुनी जाती रहती हैं, उन कहानियों के पीछे बहुत ज्यादा न भागे। ठीक है, उन कहानियों को समझना भी जरूरी होता है। भविष्य को ही बाजार देख करके चलता है और जिन क्षेत्रों में भविष्य बेहतर लगता है उसके पीछे वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं, उनके उन कंपनियों के शेयर भाव ऊंचे जाते हैं, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन कहां पर सिर्फ कहानियां हैं और कहां पर वास्तविकता में आपको आगे चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी, इसके बीच में थोड़ा फर्क समझना जरूरी होता है और थोड़ा एक संतुलन बनाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो कि हाँ अगर कुछ चार लोगों ने कह दिया कि फला सेक्टर बहुत अच्छा चलने वाला है तो आपने सारे पैसे वहीं लगा के रख दिए। तो प्रिकॉशन आपका ये कि आपके निवेश में हर तरह की चीजें होनी चाहिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा बाजार में चल रही कहानियों के पीछे नहीं भागना चाहिए और सबसे ज्यादा फंडामेंटल तौर पे जो अच्छी मजबूत कंपनियां हैं उन्हीं में पैसा लगाना चाहिए।
Yes, indeed. We always say that markets are very sensitive and volatile and very sensitive to sentiments. So you have to be very sure and use a sense of discrimination of what is real and what is rumor and perceptive.
Yes,
right?
Both things are always there in the market.
All the day. So you have to just be sharpen your sense of discrimination and knowledge as well. All right. Well, let's move on to the stocks in detail now. Many of our friends would want to know what's going, which share is going which way. All right. Domestic benchmark equity indices today ended with gains of over 0.5%, driven by rally in pharma, realty and auto stocks. The 30-share BSE Sensex gained 445 points or 0.56% to close at 80,248, and the NSE Nifty 50 advanced 145 points or 0.6% to settle at 24,276. The broader market at the Bombay Stock Exchange displayed a strong performance. The mid-cap index ended over 1% up. Small-cap index climbed over 0.8%. In the Sensex index, 21 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Ultra Tech Cement surged nearly 4%, JSW Steel jumped nearly 2.5%, and Adani Ports climbed over 2.1%. Conversely, in the top laggards, NTPC shed over 1.5%, Kotak Mahindra Bank fell 0.7%, and Hindustan Unilever dropped over 0.6%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors logged gains. Among the top gainers, realty surged over 3%, consumer durables gained over 2.2%, and commodities added over 1.5%. Conversely, in the top laggards, utilities lost over 0.4%, FMCG dipped 0.07%, and Bankex was marginally down by 0.02%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,508 companies advanced and 1,550 declined, while 179 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 114 companies hit their 52-week high, while 18 hit their 52-week low. On to rupee.
और अंतर बैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 84.70 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 106.32% पर कारोबार कर रहा था। इस बीच बेंगलुरु से हमारे नियमित श्रोता एनआर प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। प्रसाद जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछे।
हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। हेलो नालिमा जी, हेलो निखिल जी,
हेलो प्रसाद जी। जी
देयर आर टू क्वेश्चंस मिस्टर रंजन,
प्लीज आस्क।
जी
See, my first question is, I keep trading on the New York Stock Exchange regularly. I buy, sell, trading goes on. See, for example, on 31st March, this financial year, 31st March 2025, I am not holding any shares. As of that day, it will be zero. Mm-hmm. But I have traded a lot in the financial year. Should I still declare in the foreign assets while filing my returns? That is first question. My second question is, say for the next 4 months, December to March, which is the best two sectors between green energy and shipping, best to invest in the coming 4 months? Thank you. These are my two questions.
Mr. Prasad, for the first question, I would suggest that you better refer to a CA. For the second question, the two sectors you have selected, both are a very optimistic sector, both have very high potential. The government has very detailed plans for shipping sector because the government believes that our shipping infrastructure and our logistic strength has to improve a lot if we have to make a mark in the world market, in the world trade. Mm-hmm. It is also very important for our strategic needs. So shipping is obviously a sunrise sector, and green energy, everyone talks about it. There's no need to discuss it in detail why green energy is so important. Everyone knows it and discusses it. Mm-hmm. So both the sectors you have selected are fine, but I would caution you that you need to invest very wisely, prudently, and considering the ground realities as of now, not just hoping on the future. Because there are so many narratives being built up in the markets. Those narratives may happen, may not happen. And particularly your time horizon is very short, just 4 months. Mm-hmm. So not all these stories are going to happen in these 4 months. Mm. So your investment horizon is only 4 months, then it is basically a trade. And for trading, I guess you can rely on technical parameters and recent performance of the companies.
और प्रसाद जी, हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ट्रांजैक्शन के अनुसार ही नोट होती रहती हैं। तो हमारी सलाह है कि आप इन्हें जरूर साझा करें। इस बीच नोएडा से पंकज मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। पंकज जी, आपका सवाल क्या है? पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए आपका।
हाँ सर, गुड इवनिंग सर, आप सभी को।
जी गुड इवनिंग।
जी
गुड इवनिंग। और लालिमा नीले जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरा एक सवाल है।
जी थैंक यू।
गोल्ड से रिलेटेड सवाल है सर। दिवाली से गोल्ड अभी तक काफी नीचे आया है, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्या कुछ और नीचे आएगा या मैं यहाँ पे खरीद लूँ? इससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर।
जी पंकज जी, आप सोना खरीदें या न खरीदें, ये फैसला इस पर निर्भर करता है कि सोने को खरीदने के पीछे आपकी जरूरत क्या है। सिर्फ ऊपर से नीचे आ गया है, ये अपने आप में एक सफिशिएंट रीजन कभी भी किसी भी एसेट क्लास के लिए नहीं होता है। चाहे हम शेयरों के बारे में बात करें, गोल्ड के बारे में बात करें, किसी और एसेट क्लास के बारे में बात करें, सिर्फ भाव अपने टॉप से बहुत नीचे आ गए हैं, ये अपने आप में एक सफिशिएंट रीजन कभी नहीं होता है। अगर आप सोना इसलिए खरीद रहे हैं कि आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में, अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जो हम एक मान के चलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15% तक सोने का एक हिस्सा होना चाहिए, अगर उसमें कहीं पर कमी है और आपको उस हिस्से को पूरा करने के लिए गोल्ड खरीदना है, ऑब्वियसली यू कैन यूटिलाइज दिस डिक्लाइन फॉर दैट पर्पस। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं उनके हिसाब से काम करना है। आपको टेक्निकल पैरामीटर्स देखने होंगे, आपको ट्रेंड समझना होगा, और उसके हिसाब से अगर ट्रेंड को देखना है तो ट्रेंड इस समय नीचे ही जा रहा है, अभी उसने वापस पलटने का संकेत नहीं दिया है। जब देगा तो आपको बहुत ही वॉचफुल रहना पड़ेगा, और वो ट्रेंड आपका डे बाय डे का ट्रेंड अलग हो सकता है, वीकली ट्रेंड अलग हो सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसमें गहराई में उतर करके आपको ट्रेडर माइंडसेट के साथ काम करना होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अपने गोल्ड की एसेट एलोकेशन को ठीक करना है तो उसके लिए आप इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
All right, we are now joined by Akash calling us all the way from Kolkata. Ji, Akash ji, sawal puchhe.
Good evening, Madam.
Good evening,
sir.
Ji.
Sir, mera jo wife hai, wo हाउस वाइफ है, वो शेयर मार्केट और शेयर मार्केट टेक्स एज ए पार्ट टाइम जॉब एंड ही इफ ही गेन और प्रॉफिट अबाउट 6 लाख इन फाइनेंशियल ईयर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के देन व्हाट विल बी द टैक्स एंड शी हैज टू फिल अप द इनकम टैक्स आई गेट फिल अप थैंक यू मैम
जी आकाश जी निश्चित रूप से अगर आपकी पत्नी ने अगर वो हाउसवाइफ हैं तो भी अगर 6 लाख रुपए कमाए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और अगर इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ है ये गेन तो फिर आपके पास जुलाई तक का समय है अगले साल जुलाई तक का तो आप उस समय तक अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस जो भी रहता है उसका हिसाब किताब लेकर के आप एक सीए के पास जाएं उसकी मदद से आप रिटर्न जरूर फाइल करें।
दिल्ली से मनोज हमारे साथ है। मनोज जी आपका सवाल क्या है?
हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जो प्राइवेट बैंक्स हैं ज्यादा एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं
जी
और जो रेगुलर बैंक्स हैं वो कम देते हैं, तो क्या प्राइवेट बैंक्स में एफडी में कोई परेशानी तो नहीं अगर करी जाए तो?
जी
जी मनोज जी, एक कंपटीशन हमेशा बैंकों के बीच में रहता है और उसमें प्राइवेट बैंक कई बार देखा जाता है कि मार्केट में ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए और उसके लिए वो आमतौर पे कई बार थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार रहते हैं। ये हर बैंक के लिए केस अलग हो सकता है। प्राइवेट बैंक में भी ऐसा नहीं है कि हर प्राइवेट बैंक एक जैसा है, हर एक की स्ट्रेंथ या वीकनेस एक जैसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां भी आपको कमजोर बैंक मिलेंगे और मजबूत बैंक मिलेंगे और उसमें भी आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी कि जो बैंक बहुत मजबूत हैं जिनके पास लोग खुद चल करके जाते हैं उनके इंटरेस्ट रेट कम होंगे और जो थोड़े कमजोर बैंक है बाजार में जिनकी हालत उतनी मजबूत नहीं है, हालांकि ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हाँ उनमें आप पैसा जमा कर रहे हैं तो कोई बड़ा रिस्क है, लेकिन रिलेटिवली उनको कमजोर समझा जाता है बाजार में या उनकी परफॉर्मेंस कमजोर रही है, तो अगर वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए ग्राहक को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो वो कई बार ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बीच में एक वेरिएशन कितना होगा, कहीं पर 25 बेसिस पॉइंट मतलब 1/4% समझ लीजिए, कहीं पे बहुत ज्यादा फर्क आया तो 50 बेसिस पॉइंट का फर्क होगा। अगर कोई प्राइवेट बैंक आपको बहुत ज्यादा दूसरे बैंकों के मुकाबले इंटरेस्ट दे रहा है तो वहां पर आपको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई क्या वजह है कि बाजार से बहुत ज्यादा अलग जाकर के ये बैंक मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है।
जी
अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 29 अरब डॉलर से अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित होने वाले अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में सेवाएं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स तथा रसायन शामिल हैं।
All right, let's have another news item now. The Minister of State for Civil Aviation, Muralidhar Mohol, today said that India is one of the fastest growing major aviation markets in the world and has become the third largest domestic aviation market globally. In a written reply in the Rajya Sabha, he said various steps have been initiated to promote the growth of the civil aviation sector in the country, which includes developing international aviation hubs and setting up of maintenance, repair and overhaul, MRO as we call it in short, facilities. The government has also formulated an international aviation hub strategy for the development of aviation hubs. The minister said the proposal to extend the RCS Udaan scheme is under the consideration of the government. Well, so much on the aviation industry. It's often said, no, Rajiv ji, kaha jata ki jo हवाई चप्पल पहने उसे हवाई जहाज की यात्रा करने के कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है अक्सर जी। वेल, वी आर नाउ जॉइंड बाय वेद प्रकाश कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी वेद प्रकाश जी, सवाल पूछे अपना।
गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग जी, नमस्कार।
बहुत अच्छा आप लोग, विशेषता जो एनालिस्ट आए हैं आज के एक्सपर्ट, बहुत ही अच्छी प्रकार से वो अपने एनालिसिस दे के आंसर दे रहे हैं। और मेरा पहला प्रश्न है
जी, थैंक यू,
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से।
जी जी,
उसमें ये है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आउटकम में एग्जाम जनरली होता है 1010D में, क्या इनलाइटन कर सकते हैं हमको कि कोई ऐसी स्कीम की उसका लिमिट फिक्स हुआ है कि जो आउटकम होगा उसमें टैक्स देना पड़ेगा? और दूसरा वो 3% + 3% 6% स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ऑलरेडी पीएलआई का जमा करना पड़ता है, वो क्यों? थैंक यू
जी। इनकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर मुझे नहीं आई, वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझना चाह रहे हैं और उसमें जीएसटी के बारे में समझना चाह रहे हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जब आपको अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और आप से प्रीमियम लेती हैं, तो हाँ, वहां पर जीएसटी का एक कंपोनेंट आता है और उसके बारे में हाल में कुछ चर्चाएं भी हुई हैं। आगे सरकार उस पर क्या विचार करती है या जीएसटी काउंसिल क्या उस पर फैसला लेती है, ये आगे जरूर देखने वाली बात रहेगी। यदि वहां पर कुछ कमी आती है तो निश्चित रूप से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनके लिए ये काफी अच्छी स्थिति रहेगी।
All right, let's move on. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today emphasized the need for global partnerships, highlighting that the world is facing complex challenges at multiple levels. Addressing the gathering of the Confederation of Indian Industries CII Partnership Summit in New Delhi, Dr. Jaishankar pointed to the ongoing transformation in the global economy and stressed that tackling these challenges requires more than just individual national efforts. He said that it demands a collective approach.
अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज अधिकतर सकारात्मक रुख देखा गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1% से ऊपर ज्यादा चढ़ गया और जापान के निक्केई सूचकांक ने 0.7% की बढ़त दर्ज की। हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक ने 0.5% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.32% की तेजी के साथ बंद हुआ। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में मामूली रूप से 0.06% की गिरावट देखी गई। यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज मिलाजुला कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डेक्स 0.9% की बढ़त में था। लंदन का फुटसी 0.01% के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि फ्रांस का कैक 0.2% नीचे चल रहा था।
इन मालदीव्स, इंडियन एक्सपैट्रिएट्स वर्किंग इन द आर्किपेलगो आर फेसिंग डिफिकल्टीज सेंडिंग रेमिटेंसेस ड्यू टू अ परसिस्टेंट डॉलर शॉर्टेज। द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी MMA हैड इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डॉलर अवेलेबिलिटी, लिमिटिंग एक्सेस फॉर दोज अर्निंग सैलरीज इन मालदीवियन रूफिया, दैट इज MVR. Indian professionals, including doctors and teachers, are among the most affected, with families back home relying on remittances. The Indian High Commission has urged the Maldives government to ease restrictions and facilitate smoother financial transactions. All right, let's move on. We are now joined by Nitin again from Delhi. Yes, Nitin, please ask a question.
Expert ko namaskar, sir.
Ji, namaskar, ji.
हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय गोल्ड खरीदने का ठीक समय है कि नहीं, क्योंकि सीजन भी है सर्दियों का और अभी दाम भी बढ़े हैं। अगर बहुत जरूरी होता खरीदने से क्या भी घाटा हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है शेयर मार्केट के ऊपर कि कुछ फ्रॉड कंपनियां भी होती है, जैसे अभी एक हमने फिल्म देखी अभी लास्ट वीक कि जिसमें शेयर एकदम अच्छे मिलते हैं फिर बाद में एकदम जीरो हो जाते हैं। फिल्म थी जीवन मृत्यु, उसमें इस तरह दिखाया गया था। इसमें ऐसा भी कुछ फ्रॉड होता है क्या मार्केट में?
जी राजीव जी,
जी जहाँ तक इनके सोने से संबंधित सवाल का है उसका तो जवाब पहले ही दिया जा चुका है, तो आप चाहें तो वापस एयर की वेबसाइट पे इस कार्यक्रम को दोबारा सुन सकते हैं और उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। फ्रॉड कंपनियों का जहां तक ताल्लुक है, शेयर बाजार में आने के बाद कोई कंपनी किस तरह से अपना मैनेजमेंट चलाती है इसके बारे में कोई रेगुलेटर तो पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता है। उसके पास जब पहले के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर अप्रूवल देने या न देने का विकल्प रहता है और रेगुलेटर काफी सोच समझ करके ही कंपनियों को इस बाजार में आने की अनुमति देते हैं।
Oil prices edged up today amid strong factory activity in China, the world's second largest oil consumer, and escalating tensions in West Asia. Despite a ceasefire agreement, Brent crude was trading at 1.16% up at $72.67 per barrel.
और सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। भारत में 24 कैरेट सोना 0.49% गिरकर 76,780 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और चांदी 0.43% गिरकर 90,600 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। राजीव जी, मार्केट मंत्र में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आपका।
एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, एज अ रिमाइंडर, द हेडलाइंस। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड विद गेन्स ऑफ ओवर 0.5%। सेंसेक्स रिक्लेम्स 80,000 level. Nifty ends above 24,250. FDI witnesses growth of 45% in April to September this year. India among fastest growing major aviation markets in the world, third largest domestic aviation market globally, says Minister of State for Civil Aviation Muralidhar Mohol. And crude oil prices surge over 1%. Brent crude trades at $72.67 per barrel. Well, on that note, it's time for us to bid adieu. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil, signing off. Namaskar. Namaskar.